ओम शांति। तो आज से हमारी न्यू सीरीज चालू हो रही है। ये स्पार्क की बुक है जिसका नाम है ज्ञान की गहराई समझाते अव्यक्त बाप दादा क्वेश्चन आंसर्स। इसमें कुछ प्रश्न है और उत्तर बाबा की अव्यक्त मुरलियों से है। तो हमें कहा गया था कि क्वेश्चन पढ़ना है और पहले उत्तर खुद निकालने हैं, उसके बाद हम बाबा का उत्तर पढ़ेंगे और फिर उस पर विस्तार करेंगे। तो इस बुक में पहला क्वेश्चन है, इस पाठशाला का पहला पाठ क्या है? इस पाठशाला का पहला पाठ क्या है? तो बहुत बहुत सारे उत्तर आ गए इसमें, तो कि इस पाठशाला का पहला पाठ क्या है। हमें तो लगा 7 डेज कोर्स की सारी बुक बोल सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं, तो जब तक हम आते हैं उसके पहले हम समझते हैं कि हम देह हैं, हम आत्मा नहीं है। और सबसे पहले हमें बताया जाता है कि हम आत्मा हैं और ये शरीर नहीं है। एक 180 डिग्री टर्न होता है बहुत लोगों की लाइफ में, क्योंकि वो अब तक तो समझ रहे होते हैं कि हम ये देह हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज में 5.5 साल पढ़ाया जाता है शरीर के बारे में, उसकी बीमारियों के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, और जब यहाँ आते हैं और उनको बताया जाता है कि तुम ये नहीं हो, तुम ये हो, तो उसी में फिर उसके बाद पहले चैप्टर में, जैसे आपको याद होगा सबको कि पहले चैप्टर में पहला पेज जो है उसमें एक स्केलेटन का फोटो है। तो स्केलेटन के बारे में बोलता है कि ये हड्डी मांस का शरीर है और तुम एक आत्मा हो, आत्मा कहाँ निवास करती है, उसके बारे में बताया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा हमको समझाया जाता है कि हम आत्मा है। तो जैसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल देते हैं कि ड्राइवर है आत्मा और ये शरीर जो है वो कार है, प्लेन है शरीर, पायलट है आत्मा। फिर बताया जाता है कि तुम आत्मा जो वो एनर्जी है, बैटरी है जो डिस्चार्ज हो चुकी है, और परमात्मा जो है वो पावर हाउस है और उससे शक्ति लेके तुमको चार्ज करना है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स द्वारा समझाया जाता है। फिर हमने दूसरा आंसर सोचा कि इस पाठशाला का पहला पाठ क्या है। तो आप देखेंगे मुरली में बार बार यही बात आती है, बाबा कहता है कि देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक मुझे याद करो, एक मुझ बाप को याद करो। इस पाठशाला का पहला पाठ ये है। बाबा कहता है बार बार कि ये दुनिया के सब मनुष्य मर चुके हैं, तुम्हारे लिए सब तुम्हारे मित्र संबंधी सब कोई मरे पड़े हैं, इनको तुमको छोड़ना है। और कई बार हमें प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है कि देखो कि आपके मित्र संबंधियों को शमशान में उनके शव को जलते हुए देखो, तो ऐसे भी अभ्यास कराया जाता है। तो इस पाठशाला का पहला पाठ है इस देह के सब संबंध छोड़ एक मुझे याद करो। फिर पाठशाला का पहला पाठ है कि योगी जीवन पवित्र जीवन। पवित्रता इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य फाउंडेशन है। तो बाबा हर हफ्ते ये पॉइंट आता है मुरली में कि काम महाशत्रु है और तुम्हें इस पर जीत पानी है। और पवित्रता के बारे में बाबा ने कई बार कहा है कि ऑर्डिनेंस निकाला है बाबा ने कि आपको पवित्र रहना है, बाप का फरमान है कि आपको पवित्र रहना है। पवित्र जीवन योगी जीवन, तुम्हें कमल पुष्प समान ये जीवन जीना है। और योगी निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में समान रहता है। तो ये भी पाठशाला का पहला पाठ है। कई बार जो कोर्स करने आते हैं तो उनके लिए पहला पाठ होता है राजयोग का मेडिटेशन। तो राजयोग का मेडिटेशन भी इस पाठशाला का पहला पाठ है। और फिर उसके बाद वो पाठशाला बताया जाता है कि अभी तक ये सब दुनिया में जो भी है ये हठ योग है और यहाँ पर आपको राजयोग का अभ्यास कराया जाता है। फिर वो 4 पिलर्स ऑफ राजयोग का बताते हैं जिसमें ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, देवी गुण और सत्संग के बारे में बताते हैं। तो पाठशाला का पहला पाठ है राजयोग मेडिटेशन। हमारे लिए पाठशाला का पहला पाठ क्या था? मुरली। जब दादी जानकी मुंबई आए थे तो हमारी जो सेंटर की बहन है वो हमें इंट्रोड्यूस करा रही थी दादी से। हमारा कोर्स अभी तक नहीं हुआ, तो तभी भी नहीं हुआ था। तो दादी ने, वो बहन ने कहा इनका कोर्स नहीं हुआ है, फर्स्ट 2-3 चैप्टर इनको कराए हैं। तो दादी ने मेरी आंखों में ऐसे देख के कहा कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ मुरली रोज सुननी है। और बस वही थे दादी के महावाक्य हमारे लिए, और हमने मुरली सुनना चालू किया और हम कैसे ज्ञान में आए। तो पाठशाला का पहला पाठ है कि तुमको मुरली रोज सुननी है, तुमको मुरली मिस नहीं करनी है। बच्चे मुरली मिस कर देते हैं, मुरली में अच्छी अच्छी पॉइंट्स आती है, वो तुम्हारी कभी मिस ना हो। तो पाठशाला का पहला पाठ है कि मुरली रोज सुननी है। फिर कई बार पाठशाला का पहला पाठ है, एंट्री पास है ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, एक तो पवित्र जीवन और एक भोजन की शुद्धि, तो ब्रह्मा भोजन और कैसे आपको बाबा की याद में खाना बनाना है और खाना खाना है, तो शुद्ध भोजन के बारे में बाबा ये पाठशाला में पहला पाठ पढ़ाया जाता है हमें। फिर बाबा हमेशा कहते हैं ना कि ये मन एक घोड़ा है और इस पर तुमको, ये कर्मेंद्रियों पर तुमको कंट्रोल करना है, इसको तुम्हारे वश करना है, तो कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है। तो पांच कर्मेंद्रियों को वश में करना, ये पाठशाला का पहला पाठ है। और पाठशाला का पहला पाठ है एम एंड ऑब्जेक्ट हमारा लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण बनना भी इस पाठशाला का पाठ पहला पाठ है कि तुमको ऐसे दिव्य गुण धारण करने हैं और इनके तरह रहना है। तो कैसे हम हमारा जीवन इनकी तरह बनाए कि हम भी लक्ष्मी नारायण बने। फिर पाठशाला का पहला पाठ है पांच विकारों का त्याग करना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब तक हम इस विश्वविद्यालय में आते तब तक हमें विकारों के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमको बताया जाता है कि ये पांच विकार है और इनका तुमको त्याग करना है। फिर किसी किसी के लिए दसवां पॉइंट किसी किसी के लिए होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ही पहला पाठ है पाठशाला का उनके लिए। तो पाठशाला का पहला पाठ है इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना। तो बाबा ने, अब बाबा का उत्तर क्या है, तो पाठशाला का पहला पाठ क्या है, क्या होगा इसमें से कोई है, इतने बोले इसमें से बाबा का कोई उत्तर। हाँ, दे से दे के सब मर जीवा। तो बाबा का उत्तर है अपने को मर जीवा बनाना, मर जीवा अर्थात अपने देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर जीवा। ये पहला पाठ पक्का किया है, तो किसी ने उत्तर दिया होगा, ब्रैकेट में लिखा है संस्कार से मर जीवा नहीं हुए है। जब कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार भी खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ भी पिछले संस्कार क्यों याद आना चाहिए, जबकि जन्म ही दूसरा, तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। ये पहला पाठ है मरजीवा बनने का, वह पक्का करना है। पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे, हमारे नहीं। पहले शूद्रों के थे, अभी ब्राह्मणों के हैं। तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। पराए संस्कार अपने क्यों बनाते हो? जो पराई चीज को अपना बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? जो पराई चीज को अपना बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे?
चोर।
तो ये भी चोरी क्यों करते हो? तो ये भी चोरी क्यों करते हो? ये तो शूद्रों के संस्कार है, ब्राह्मणों के नहीं। शूद्रों की चीज को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते हैं? अछूत के साथ कपड़ा भी लग जाए तो नहाते हैं। तो शूद्रपने का संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए तो क्या करना चाहिए?
दो बार स्नान
और
योग,
याद का स्नान, ज्ञान का स्नान, दोबारा से पहला पाठ पढ़ना चाहिए, फिर से 7 दिन का कोर्स। शांत स्वरूप हो ओरिजिनल संस्कारों के बारे में। तो बाबा ने क्या कहा, तो शूद्रपनों का संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए तो क्या करना चाहिए? उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। इतना जब ध्यान रखेंगे तो औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। तो यह कहा, क्या कहा बाबा ने, अपने को मर जीवा बनाना, मर जीवा अर्थात अपने देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर जीवा। ये पहला पार्ट पक्का किया है। तो मर जीवा, हम सोच रहे थे मर जीवा बनने के लिए हमारा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। बाबा हमेशा कहता है ना, मर जीवा बन जाओ, तुम इस दुनिया से मरे पड़े हो, तुम्हारे लिए दुनिया मरी पड़ी हुई है, तुम्हारे मित्र संबंधी मरे हुए हैं। तो मर जीवा बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? मर जाना। हाँ, तो इसका अभ्यास कैसे करें? हम बार बार इसको याद करते हैं, तो इसका अभ्यास कैसे करें? तो जैसे कि हमने सोचा पहला पॉइंट, ये जो सफेद कपड़े हमने पहने हैं, ये सफेद कपड़े एक तो प्योरिटी का प्रतीक है और कफन। तो ये जैसे कि कफन पहना है हमने, और जब भी हम आईने में देखे तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि कोई जिंदा लाश ही खड़ी है, क्योंकि हम इस दुनिया से मर चुके हैं ना। हमें याद है जब हम ज्ञान में पहले पहले चलने लगे तो हमारी फैमिली से बहुत विरोध था। तो हमारी माताजी एक दिन गुस्से में कहती है कि ये ब्रह्मा कुमारी ना तुमको जिंदा लाश बना देते। तो मैंने पढ़ा था ना ये कि वाइट कपड़े प्योरिटी और कफन का प्रतीक है, तो मैंने सोचा कि देखो मम्मी तो मेरे से भी आगे उसको बिना पढ़े भी पता है कि ब्रह्मा कुमारी जिंदा लाश बना देते। तो जैसे कि हमने ये कफन पहना है, ये बार बार हमें स्मृति आए, हम इस कपड़ों की सफेदी ना देखते हुए परंतु ये देखे कि इसका मतलब क्या है। ये सिर्फ सफेद कपड़े नहीं है परंतु ये कफन भी है, क्योंकि हम इस दुनिया से मर चुके हैं, इसीलिए मर जीवा एक ही हो सकता है। दूसरा, जैसे हमेशा बताया जाता है कि शमशान में जाओ और वो वैराग्य को उत्पन्न करो, और बीच में किसी ने ड्रिल भी भेजी थी, शमशान की ड्रिल, कि अपने को ही मरते हुए देखो, अपना ही शव रखा हुआ है और हाँ जल रहा है, और देखो कि वो जल रहा है, कफन पड़ा हुआ है हम पर, और संस्कार हो रहा है हमारा, हमारी चार धाम की यात्रा हो रही है। पूरी कमेंट्री है ना कर सकते, हफ्ते में एक बार भी कर सकते एटलीस्ट, और है ना मित्र संबंधियों को भी देखो कि वो भी है ना मरे पड़े, एक एक को देखो कि एक एक जल रहे हैं। ऐसे अगर करेंगे तो समझ में आएगा कि मर जीवा है। तो ये एक कर सकते है, तो ये एक अभ्यास है कॉमेंट्री के द्वारा कर सकते। फिर दूसरा, तीसरा, जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति होता है, उसको कुछ सुनने नहीं आता है, देखने नहीं आता है, कुछ नहीं देख सकता, वो सुन नहीं सकता, वैसे भी हम भी देखते हुए भी ना देखे, सुनते हुए भी ना सुने, है ना। हाँ, तो वही ना, नहीं सुनना। जैसे अभी मरा हुआ व्यक्ति है, आप उसको उल्टा सुल्टा कुछ भी बोलो लेकिन उसको नहीं सुनने आता ना। हाँ, तो यहाँ पे मर जीवा का पॉइंट चल रहा है ना, तो मर जीवा, तो मरे हुए हैं हम, तो इसीलिए अगर कोई कुछ बोले भी तो ना सुने, अगर ऐसी भी कोई बात चल रही है तो देखते हुए भी ना देखे। जैसे आपको याद होगा वो उदाहरण, मम्मा रमेश भाई जी के साथ जा रही थी कार में, और वो एडवर्टाइजमेंट का फोटो था, और आगे जाके मम्मा रमेश भाई जी ने पूछा ना मम्मा को, मम्मा आपने वो देखा एडवर्टाइजमेंट, हम ये अपने ज्ञान को समझाने के लिए इसको यूज कर सकते। तो मम्मा का उत्तर क्या था? मम्मा ने कहा कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट, मैंने तो देखी नहीं। तो उन्होंने कहा मम्मा आपने नहीं देखा? तो मम्मा ने कहा कि मम्मा इस संसार में है ही नहीं, सिर्फ सेवा अर्थ मम्मा नीचे आती है, सेवा करती है, और मम्मा पूरा टाइम ऊपर है। तो देखते हुए भी नहीं देख रही ना, कि मम्मा की आंखें तो बंद नहीं थी, सर इतना बड़ा बोर्ड तो दिखना चाहिए कोई बोलेगा, लेकिन फिर भी नहीं दिखा ना। तो देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। कोई गाली भी दे रहा है तो हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई हमारी इंसल्ट भी कर रहा है तो हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम मर जीवा है, मर चुके हैं हम इस दुनिया से, मतलब वो जाए ही नहीं हमारे कानों में। तो एक ये कर सकते हैं, और वो तो अलग टॉपिक है। तो चौथा पॉइंट है नो रिएक्शन। अगर देखो जैसे कोई मरे हुए व्यक्ति को आप मारो, लकड़ी से मारो या चाकू से मारो, तो वो उसको दर्द नहीं होता है, ना ही वो चिल्लाता है, ना ही वो उफ भी करता है ना, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति है। इसी तरह से हमको भी ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नो रिएक्शन, कि अगर कुछ होए हमारे साथ, अगर कोई कोई इंसल्ट करे हमारी, या कोई कुछ बुरा बोल दे हमसे, या कोई बड़ी आवाज में हमसे बोले, तो हम तुरंत रिएक्ट करते। तो कहीं ना कहीं हमको आहिस्ता आहिस्ते प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि है ना अभी हमको ये नहीं करना है। तो नो रिएक्शन प्रैक्टिस, तो नो रिएक्शन, तुम मर चुके हैं। पांचवा हमने सोचा, जब मर जाते हैं ना तो वो डेड बॉडी को नहलाया जाता है ना, है ना, इस्लाम में उसको कहते हैं गुसुल। तो उसको पूरा नहलाया जाता है पूरी तरह से, एंड फिर उसको तैयार करके लेके जाते हैं शमशान घाट में। तो जैसे वहां पर एक व्यक्ति मर जाता है तो उसको कैसे पानी से स्नान कराया जाता है, तो यहाँ पर भी हमको अपने पॉइंट्स को पक्का करने के लिए ज्ञान का स्नान करना चाहिए, और वो भी रोज करना चाहिए। जैसे बाबा की मुरली में पॉइंट्स आते हैं ना कि आपको एक घंटा रेगुलर स्टडी करना है। तो जब हम ये स्टडी करेंगे, बाबा की ये पॉइंट्स याद करेंगे, तब हमको पक्का होगा, वरना ये वाली जो मरजीवा वाली पॉइंट है ये ऐसी ही चली जाएंगी। तो ये भी याद करना, और ज्ञान स्नान रोज करना, तो ज्ञान स्नान कर सकते हैं। फिर जब मरते हैं तो जलाया जाता है ना, एक तो जलाया जाता है, एक तो दफनाया जाता है। तो जो जलाया जाता है उसके लिए हम ये सोच सकते हैं, जैसे उसको रखते हैं लकड़ियों में और उसमें क्या घी, और तो वो घी डालते हैं उसमें, तो उसको जलाते हैं। तो वहां पर कैसे डेड बॉडी जलती है ना, तो यहाँ पर भी जब हम मर जीवा है तो हमको भी किस में जलना है, योग अग्नि, योग अग्नि में अपने आप को परिपक्व बनाना है। और यही है कि जो मर जीवा, तो योग अग्नि में अपने आप को परिपक्व बनाना है। तो वहां पर वो अग्नि, हाँ, तो यहाँ पर योग की अग्नि है। और सातवां पॉइंट हमने सोचा कि कोई कोई धर्मों में जलाया नहीं जाता लेकिन दफनाया जाता है। तो दफनाया, अगर एक व्यक्ति मर गया है तो उसको दफना रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी जब दफना रहे हैं मतलब अंतर्मुखी होना, अंडरग्राउंड चले जाना। तो मर जीवा अर्थात अंतर्मुखी बनना, और फिर ज्ञान की पॉइंट्स का मनन करना, और बाहर की बातें फिर कुछ जो अंडरग्राउंड व्यक्ति रहता है जैसे, है ना, या तो जो अंतर्मुखी रहता है, ज्यादा बाह्य मुक्ता में नहीं आता, उसको बाहर क्या हो रहा है उसको पता नहीं चलता, तो वो उसको निग्लेक्ट करता है, वो उसको इग्नोर करता है। और अंडरग्राउंड कोई नीचे रहेगा तो उसको पता नहीं चलता है कि ऊपर क्या हो रहा है। तो ऐसे ही मर जीवा व्यक्ति भी अंतर्मुखी, अंडरग्राउंड। तो ये सातवीं पॉइंट, तो मरजीवा बनने के लिए हमने सात पॉइंट्स देखी। सबसे पहला कि हमने ये कफन पहना है, सफेद कपड़े हमारे, ये कफन है, तो ये बार बार हमारी स्मृति में आए कि हाँ हम मर चुके हैं। सेकंड, ड्रिल कर सकते हैं कि शमशान में हमारा शव जा रहा है, हमें ही जलाया जा रहा है, हमें ही दफनाया जा रहा है, हमें ही चार धाम की यात्रा कराई जा रही है, सब ओम शांति बोल रहे जोर जोर से, पूरी ड्रिल तैयार कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट कि मरा हुआ व्यक्ति सुनता नहीं, देखता नहीं, तो वैसे भी देखते हुए भी ना देखे, सुनते हुए भी ना सुने। चौथा पॉइंट, नो रिएक्शन, मरे हुए व्यक्ति को कुछ भी करो, नो रिएक्शन। पांचवा पॉइंट, जैसे वहां पर एक डेड बॉडी को स्नान किया कराया जाता है, वैसे हमें भी यहाँ पर ज्ञान स्नान करना है। छठा पॉइंट, जैसे संस्कार होता है अग्नि से जलाया जाता है शव को, तो वैसे ही यहाँ पर भी योग अग्नि में अपने आप को तपाना है, परिपक्व बनाना है। और सातवां पॉइंट, जैसे कि दफनाते हैं वहां पर, तो यहाँ पर भी हम अंतर्मुखी हैं, हम अंडरग्राउंड हो जाए, तो मरजीवा बनने के लिए हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा, जब कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार भी खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ भी पिछले संस्कार क्यों याद आना चाहिए, जबकि जन्म ही दूसरा तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए, जबकि जन्म ही दूसरा तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। ये पहला पाठ है मरजीवा बनने का, वह पक्का करना है। पिछले संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे। तो ये मुरली में, ये भी पॉइंट्स बहुत बार मुरली में आती है कि पुराने संस्कारों को भूलना है, कि पुराने संस्कार तुम्हारे है ही नहीं, तो अब हम इसके लिए क्या प्रैक्टिस करें, आदि संस्कारों को इमर्ज करें। लेकिन पुराने संस्कार बार बार हमको याद आ रहे तो उसको कैसे भूले, उसको कैसे मतलब ये हमारे है ही नहीं, क्या करें उसके, ये रावण के है, ये स्मृति में लाए, और बोला ना वो तो आदि अनादि संस्कार को इमर्ज करना, पॉजिटिव स्मृति और
मेरा पन कर।
हाँ जी,
मेरे संस्कार मेरा नेचर
है, अच्छे संस्कार को लेना है।
मेरा पन खत्म
मेरा नेचर, अपने को बिजी कर देना कुछ और काम में। हाँ, प्रैक्टिकली भविष्य और ये रूप सामने रखना। दिव्य। पुराने संस्कारों को टच नहीं करना, संस्कारों का संस्कार कर दो। समय की स्मृति होनी चाहिए, कौन सा समय चल रहा है, वैराग्य चाहिए। कागज में लिख के उसको जला दो। अरे वाह, ये भी कर सकते तो जल जाएंगे। नए संस्कारों के एंजॉयमेंट में रहो, खुशी में रहो, उसके ज्ञान की क्रिएटिविटी करे कुछ। अपने लक्ष्य को याद करो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि याद नहीं आएंगे। संघ की संभाल करो, अन्न की परहेज तो पुराने संस्कार नहीं आएंगे। किसी को अन्न खाने का ही पुराना संस्कार, बहुत ज्यादा खाने का। चलो, तो बहुत सारे पॉइंट्स आए इसमें कि पुराने संस्कारों को कैसे भूलना है। तो हमने कुछ पॉइंट्स निकाले थे। किसी चीज को हम बार बार याद करते तो वो सामने रहती है। बार बार अगर ये बोलेंगे ये मेरे पुराने संस्कार है, पता है मुझे ऐसा होता है तो मुझे रोना आता है, रोना मुझे बहुत आता है, मुझे पहले से ही रोना बहुत आता है। अब मैं इस चीज को बार बार अगर बोलूंगी तो यही मेरी स्मृति में रहेगा और यही मेरा टॉप लिस्ट में रहेगा। जैसे व्हाट्सएप में आप देखते हैं, जिन लोगों से हम रोज बात नहीं करते या रोज व्हाट्सएप नहीं करते वो सब नीचे जाता है ना, और जिन लोगों से रोज चैटिंग करते रोज बात करते तो उन लोग ऊपर रहते हमारे और वो वाले नीचे रहते। तो इसी तरह से पुराने संस्कारों को भी बार बार स्मृति में ना लाए कि ये मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे, जैसे कहा ना मेरेपन को खत्म करो तो, और नए को याद करो तो वो नए वाले ऊपर रहेंगे और जो पुराने वाले हैं वो नीचे जाएंगे। तो इसी तरह से पुराने संस्कारों को भूलते जाना है और उनको बार बार स्मृति में नहीं लाना है कि ये मेरे हैं। जितना रिपीट करेंगे उतना वो पक्का होता जाएगा, क्योंकि हमारा कैसा होता है कि हमारे में कोई अगर एक संस्कार होगा ना और अगर हम उससे थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं तो हम 10 लोग को सुनाते जाके कि ये ना मेरे में ये है, पता है मेरे में ये है, तो वो पक्का होते जाएगा ना। जो अच्छे संस्कार है उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करें, ना कि जो हमारे पुराने संस्कार या बुरे संस्कार या दुख देने वाले जो संस्कार है हमारे उनका वर्णन करें। तो ये एक है। फिर हमने सोचा कि जब कोई चीज पुरानी हो जाती है ना, अगर कोई कपड़े हमारे पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम उसको कबर्ड में रखते नहीं रखते, हम अंदर भी नहीं रखते उसको, निकाल के एक थैली में बांध के दे देते या हटा देते उसको वहां से। हम चाहते हमारा कबर्ड बहुत अच्छा हो, तो यहाँ पर भी ये कबर्ड भी अच्छा होना चाहिए। तो ये जो है ना कि ये मेरे नहीं है, इसको निकालते जाओ, उसको डिस्कार्ड करना कि ये पूरा अभी मेरे नहीं है, अभी ये स्मृति हो कि अभी ये नया जीवन है और अभी नए संस्कार मुझे धारण करने और ये पुराने संस्कारों को निकालते जाना है। फिर कुछ समय के लिए कभी कभार हमारे पुराने संस्कार जो होते हैं उसके ट्रिगर्स होते कि ये हुआ तो ये होगा, अगर किसी ने कुछ बुरा बोला तो रोना आएगा या अपसेट हो जाएंगे। तो कुछ समय के लिए उन व्यक्तियों को और उन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा जब तक हम अंदर से पक्के ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पुराना संस्कार है ज्ञान में आने से पहले बहुत खाने की, बहुत खाना, स्पाइसी खाना, मसाले वाला खाना, अब जब यहाँ पर आए तो पता चला कि शुद्ध अन्न खाना है, योगी जो है वो कम खाता है ना, तो फिर ऐसी जगहों पर ही ना जाए जहाँ पर आपको बहुत मसालेदार चीजें मिलने वाली है ना, जहाँ पे आपको बहुत स्वादिष्ट चीजें मिलने वाली है, क्योंकि आपका पुराना संस्कार है कि आप ये जब देखोगे तो आप बहुत ज्यादा खाने वाले हो। तो इसीलिए उस जैसे कोई फंक्शन है, आपको बुलाया जा रहा है वहां पे, जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शन हमको अटेंड करने, तो उन चीजों को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना ताकि आप पक्के होते जाए। है ना, जैसे कोई व्यक्ति को अभी हम कब तक किसको अवॉइड करेंगे, लेकिन थोड़ा अपने आप पे काम करने के लिए, ज्ञान योग से अपने आप को भरने के लिए थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना। जैसे अगर किसी ने हमको फोन पर ही बहुत चिल्ला दिया और फिर और हम उनके साथ फोन वापस फोन करें, वापस बात करें, वापस उसको मैसेज करें, तो दुख आएगा ना, क्योंकि वो भी तो सामने से कुछ बोलेगा। कुछ समय के लिए अलग हो जाए उनसे, कुछ समय के लिए दूर रहे उनसे, जब तक आप अपने आप को परिपक्व बना दे, स्ट्रांग बना दे कि अब हाँ मैं इनको फेस कर सकती हूँ, फिर आए। नहीं तो फिर वही पुराने संस्कार आएंगे कि कोई मुझे कुछ बोलता है और मैं अपसेट होती हूँ, कोई मुझे कुछ बोलता है और मैं रोती हूँ, है ना, कोई मुझे कुछ बोलता है और मुझे गुस्सा आता है। तो इन सब चीजों से फिर दूर रहना होगा। तो जब पुराने संस्कारों को जीतना है तो कभी कभी कुछ समय के लिए उनको अवॉइड करना पड़ेगा। फिर देखा गया है कि जितना हम अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं उतना हमारी जो पुरानी स्मृतियां है वो सब भूलती जाती है। जितना बीज रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे ना उतना ये पुराने संस्कार अपने आप ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि है ना थे। जैसे बाबा ने आगे लाइन कही ना कि ऐसा लगना चाहिए कि जैसे ये कोई और के थे, मेरे थे ही नहीं, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। तो अशरीरीपन का अभ्यास। दूसरा, पुराने संस्कारों को जैसे कहा कि अच्छे संस्कारों को भरते जाए, जितना अच्छे संस्कारों को भरते जाएंगे पुराने ऑटोमेटिकली खत्म होते जाएंगे। तो भरते जाओ, अच्छा भरते जाओ, अच्छा भरते जाओ, तो पुराने खत्म होंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि ब्राह्मण आत्माएं हमेशा सप्रेसिव मोड में जाती है, लेकिन यहाँ पर है जैसे कहते हैं रूपांतर, सब्लिमेशन होना चाहिए। अगर किसी में कोई नींद करने का संस्कार है बहुत, उसको नींद बहुत आती है, लेकिन हमको कहा अभी कोई 10 बजे तक सोता है, अब उसको अमृत वेला 4 बजे उठना है, तो वो अपनी नींद को सप्रेस नहीं करना है, लेकिन उसको अभी एक ऐसा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें उसकी नींद भी पूरी हो और वो अमृत वेला भी उठे। तो सब्लिमेशन होना चाहिए यहाँ पर, तो रूपांतर जैसे कहते हैं, सप्रेशन नहीं होना चाहिए कोई भी चीज का कि मुझे नए संस्कार भरने हैं क्योंकि बाबा ने कहा है, बहन जी ने कहा है कि आपको 10 बजे तक नहीं सोना है, आपको 4 बजे उठना है। तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, हर चीज की प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास, तो हम उसको कर सकेंगे। तो अच्छे संस्कार भरते जाना और फिर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा, अगर किसी को दिन भर बिजी रहते सेवा में लेकिन जब रात में बेड पर जाते तब व्यर्थ आता है। रात में जब बेड पर बैठते तब हमारा मोबाइल निकाल के हम अपने व्हाट्सएप चेक करते हैं या ईमेल्स चेक करते हैं और व्यर्थ की एंट्री वो पॉइंट पर है। अब ये मेरा संस्कार बन गया है कि जैसे ही मैं बेड पर जाऊंगी वैसे ही मैं अपना मोबाइल पकड़ूंगी और चालू करूंगी, तो ये मेरा संस्कार मुझे चेंज करना है। तो मेरे पास इसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं इसको कैसे चेंज करूं। हाँ, मुझे बाबा ने कहा है कि ओके आपको 15 मिनट आधा घंटा योग करके सोना है, आपको कुछ पढ़ के सोना है, तो वो प्लानिंग बनाए और उसको फॉलो करें, तो ये कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें देखी हमने कि पुराने संस्कारों को जीतने के लिए क्या कर सकते हम। तो बाबा ने कहा कि पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे, हमारे नहीं, पहले शूद्रों के थे अभी ब्राह्मणों के हैं, है ना। ऐसा भी देखा होगा ना, जैसे हम जितने भी साल से ज्ञान में हैं, हम अपने आप को फ्लैशबैक में लेके जाए और आज हम अपने आप को देखें, हम अलग है ना, जैसे हम पहले थे वैसे हम नहीं है। पहले जैसे कि अगर शादियों में जाते थे या पार्टी में जाते थे या मित्र संबंधियों को मिलने जाते थे, अभी हम वो सब नहीं कर रहे, अभी हमारा पूरा अलौकिक जीवन है। लेकिन इसमें एक और बात है कि वो कभी कभार क्या करते, हम वहां तो नहीं जाते परंतु यहाँ पर तो सब करने लगते। जैसे कि वहां पर पार्टीज में जाते थे, बर्थडे पार्टीज में जाते थे, नहीं अभी तो हम बर्थडे नहीं, लेकिन हम अपनी अलौकिक बर्थडे तो बहुत अच्छे से मनाते हैं यहाँ पर। तो फिर हम और नाम देते हैं सेवा का, तो वो भी देखना है कि हम किस तरह से, ऐसे तो नहीं कि वहां पर ये कर रहे थे और यहाँ पर हम ये करने लगे। तो हाँ, तो रूपांतर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर नहीं करो और यहाँ पर उसको अलौकिक रूप में, अलौकिक रूप का नाम देके करो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि हम पहले शूद्रों के थे अभी ब्राह्मणों के हैं, तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं हुए ना, होने ही होने चाहिए। पुराने संस्कार अपने क्यों बनाते हो, जो पराई चीज को अपना बनाते हैं उनको क्या कहेंगे, चोर। तो ये भी चोरी क्यों करते हो, ये तो शूद्रों के संस्कार है ब्राह्मणों के नहीं, शूद्रों की चीज को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते हैं। अछूत के साथ कपड़ा भी लग जाए तो नहाते हैं। तो शूद्र पने का संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए तो क्या करना चाहिए? उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है। जैसे गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। मतलब उसको बुद्धि में भी नहीं लाओ। इतना जब ध्यान रखेंगे तो औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। इतना जब ध्यान रखेंगे तो औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। तो ये था पाठशाला का पहला पाठ, क्या है इसका उत्तर। अच्छा, ओम शांति।